अपने लिए निरंतर संयोग बहुत मिलते हैं, चाहे वे सुख के संयोग हो, चाहे वे दुख के संयोग हो, चाहे मित्र का संयोग हो, चाहे शत्रु का संयोग हो, ये संयोग हमेशा मिलते हैं। मित्र के संयोग में सुखी होते हैं, शत्रु के संयोग में दुखी होते हैं, और शत्रु के वियोग में सुखी हो जाते और मित्र के वियोग में दुखी हो जाते। सुख और दुख की पाली बदलती है, बाकी तो सुख दुख तो लगे हुए हैं। किसी के संयोग में सुख होता तो किसी के वियोग में सुख होता है। बताइए, ये संयोग वियोग दोनों ही मेरे लिए सुख उत्पन्न करने वाले और संयोग वियोग दोनों ही मेरे लिए दुख उत्पन्न करने वाले, ऐसा मुझे जान पड़ता है। लेकिन वास्तव में मेरे अंतरंग के जो शुभ अशुभ कर्म हैं, वही इसमें कारण बनते हैं। ऐसा अगर अपने मन में धीरे धीरे करके और भाव उत्पन्न होने लगे, तो ये एकत्व भावना आसानी से अपने जीवन को परिवर्तित करेगी। हमारी सबके बीच में रह करके भी दृष्टि बदल जाएगी, सबके बीच में रह करके और अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए है एकत्व भावना। ये तो विचार कर लिया, इससे क्या होगा, इससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, स्वावलंबी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और दूसरे पर अपने कर्मों का बोझा डालने का मन नहीं होगा, अपना बोझा खुद कम करने के लिए उपाय करने का मन हो। अभी तो काम बिगड़ जाने पर उसकी सारी जिम्मेदारी दूसरे के मत्थे डालकर हम उससे सोचते कि मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अब जरा सी दृष्टि बदल जाने से मेरे बिगड़े हुए काम के लिए मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूं और उस काम को स्वयं संभाल लेता हूं, अर्थात मेरे अपने अशुभ असाता कर्मों को मैं स्वयं भोगूं और समतापूर्वक भोगूं, तो आगे के लिए वो असाता मेरी क्षीण होती चली जाती है। ऐसा भाव अपने आप उत्पन्न होगा तो आत्मबल बढ़ेगा। ये स्वावलंबी बनने और आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसान सा उपाय है। इतनी पराधीनता आज अपन की है, विचार करें तो जरा जरा सी चीजों में सुबह से शाम तक जितनी पराधीनता है उतना ही संकलेश है। और अब उसकी तो काम नहीं चलेगा, तो क्या करें, सबको छोड़ के एक तरफ ही अपने बैठ जाए, बाबा जी बन जाएगा। नहीं, बाबा जी बनने से भी नहीं होगा, बाबा जी बन के भी अपने भीतर की स्वाधीनता नहीं आई तो क्या काम के बाबा जी। स्वाधीनता तो अपने ही जीवन में लाना पड़ेगी, अपने ही परिणामों में। स्वाधीनता का मतलब क्या है, यही है कि अपने कर्मों का कर्ता भोक्ता स्वामी मैं स्वयं हूं, दूसरे के मत्थे नहीं डालो। अपने शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भोक्ता स्वामी मैं स्वयं हूं। इनमें बिगाड़ दो, उनमें अच्छो कर दो, सुख जो उनमें अच्छो कर दो सुख हमारे हो गए, जो उनमें बिगाड़ दो सुख पराये हो गए। अब लियो, ये खेल तो दिन भर चलता अपने पराये का, उसके अलावा और कौन सा खेल है बताइए। लेकिन हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठें, सब हमारे अपने हैं। हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता है? सब हमारे अपने हैं, लेकिन सब अपने अपने हैं, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। आचार्य महाराज से जब दीक्षा हुई 1987 में, पहली बार आईका माताजी की दीक्षा हुई थी, और उसी समय 11 छुटलक जी, 12 छुटलक जी बने थे, 11 माताजी बनी थी, 23 दीक्षाएं हुई 1987 में, और 23 महाराज पहले से थे। उपासनाथ भगवान की समोशरण आया था, 23 तीर्थंकर भी हैं, सो अच्छा क्रम बैठा था कि 23 पहले से थे, 23 में भगवान की समोशरण आया था और 23 दीक्षाएं और हुई, ऐसा सब बड़े उत्साहित थे हम लोग। पर अब हमने तो जो है 4-5 महाराज जी देखे आचार्य श्री के साथ में, बल्कि 3 ही महाराज थे उस समय से, और फिर देवन एक साथ 40 महाराज बैठे हैं, तो क्या अपन भी उसमें शामिल हैं। गदगद हो गया मन, हमने हाथ जोड़ के आचार्य श्री से कहा भक्ति के बाद सुबह सुबह कि महाराज कुछ उपदेश तो दे, आज हम लोगों के लिए विशेष रूप से आप कुछ कहो। तो आचार्य श्री प्रसन्न तो थे ही, प्रसन्नता किस बात की है कि हमारे शिष्यों की संख्या बढ़ गई, इसमें प्रसन्नता है ये भैया, ऐसा मैं समझना। प्रसन्नता इस बात की है कि जे पता नहीं संसार अपना बढ़ाते सो इतने जीव मोक्ष मार्ग पर लग गए, इस बात की प्रसन्नता है। मोक्ष मार्ग पे लगते देख करके जान करके प्रसन्नता होना, नहीं हमारे अनुसार चल रही से हम प्रसन्न हैं, तो जो तो संसार ही होगा और कछु नहीं। हाँ जी जी, बहुत दृष्टि का ही फर्क है और कुछ नहीं है। उनको प्रसन्नता थी कि चलो इस तरह से ये सब जीव मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं और अपना अपना कल्याण कर जाएंगे। मैं तो निमित्त हूँ, कई बार आचार्य यही चीज कहते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, बाकी आप अपने कल्याण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, आप करो तो और नहीं करो तो आप अपने परिणाम स्वयं संभालो। अब आचार्य श्री ने दो बातें कही और बहुत छोटी सी बात थी, आज वो बात एकदम स्मरण में आ गई। उपदेश क्या था कि देखो जब सबके बीच अपनी चर्या करो, बोलो बैठो उठो, तो क्या भाव रखना कि जी सब हमारे साधर्मी हैं, सो सब हमारे हैं, तो सबके सुख दुख का मुझे ध्यान रखना है। किसी के भी दुख में मैं निमित्त ना बनूं, सुख में कोई अपना निमित्त बनावे तो बनावे, लेकिन मैं किसी के दुख में निमित्त ना बनूं, जिसकी जितनी भी सेवा हो सके सो मैं करूं। जी हो गया। और फिर सुनो, इतना ही नहीं है, जब सामायिक में बैठो तो विचार करना कि कोई किसी का नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। देखो एक हो गया व्यवहार जिसमें कि हम ऐसी अपनी चर्या करें, ऐसे सबके बीच उठे बैठे बोलें बात करें जिसमें कि अपनापन झलके, और जब स्वस्थ होकर के आत्मा में लीन होवे तो अत्यंत स्वावलंबी और कोई किसी का नहीं है यहाँ पर ऐसा भाव रख करके और अपने कर्मों की निर्जरा का उपाय करें, अपने सुख दुख के लिए अपने शुभ अशुभ कर्मों को ही निमित्त माने, कितने आसानी से निश्चय और व्यवहार दोनों की दृष्टि आचार्य महाराज ने इतनी आसानी से दे दी। यही एकत्व भावना है। एकत्व भावना की मायने ये नहीं है कि सबसे अलग थलग छिटक के एक तरफी खड़े हो गए, सो हो गए भैया होशियार, एकत्व भावना हो गई। हाँ, सबके बीच में रह करके भी अपने कर्मों का स्वामी तो मैं हूं, अपने शुभ अशुभ कर्मों के उदय से मैं सुख दुख पाता हूँ, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, न किसी से शिकायत करता हूँ। ये भाव अपने भीतर बना रहे तो अपन जहां भी हैं वहीं पर ये एकाकी पने का भाव बना रह सकता है, ये एकत्व भावना अपने भीतर बनी रह सकती है।